बयानो तर्जुली 171 और 172। कंघी का बयान, सर के बालों में कंघी करना मुस्तहब है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैं हैज़ की हालत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में कंघी करती थी। इसे बुखारी ने रिवायत किया। तो क्या पता चला कि औरत पीरियड्स में ऐसे नापाक नहीं हो जाती कि मर्द के सर को या बालों को भी हाथ ना लगाए। सर के बालों में दाई जानिब से कंघी शुरू करना मुस्तहब है। 261 में यह हदीस आएगी आगे, और बात भी समझ आती है, हर काम सीधी तरफ से ही करना है। हर वक्त कंघी करते रहना या अपने आप को बनाने संवारने में वक्त जाया करना मकरूह है। बस ये देख लें, बल्कि आगे शायद रिवायत आ रही है कि नहीं, एक दिन छोड़ के कंघी करना भी हदीस से साबित है। हर रोज कंघी करना पसंदीदा नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह ने हर रोज कंघी पट्टी करने से मना फरमाए। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। यानी कम अज कम इसे ये तो समझे ना कि यही गम और हम ना हो जाए हर वक्त कि हमने अपने आप को संवारना है। हजरत अब्दुल्ला बिन बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सहाबा कराम में से एक आदमी जिसका नाम उबैद था, इसने कहा कि रसूलुल्लाह ने ज्यादा इरफाह से मना फरमाया। हजरत बुरैदा से पूछा गया, इरफाह का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा, इसके मफहूम में दीगर बातों के अलावा कंघी करना भी शामिल है। इसे निसाई ने रिवायत किया है। और मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था कि अब खास तौर पे जब हम प्लास्टिक की कंघियां इस्तेमाल करते हैं, तो अब डॉक्टर्स ने या जो भी इस चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बताया कि जब बहुत ज़्यादा हम कसरत से करते हैं तो चार्जेस पैदा होते हैं बालों में, चार्ज होते हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो उससे बालों की क्वालिटी और भी ख़राब होती है, और फिर बालों के गिरने का ख़तरा भी होता है। आपने देखा होगा आपकी नानियाँ दादियाँ लकड़ी की कंघी इस्तेमाल करती थी, बारीक कंघियां इस्तेमाल करती थी, फिर कंघियों में धागे बांध बांध के इस्तेमाल करती थी। अब वक्त के साथ साथ हेयर ब्रशेस में चीज़ बदल गई, उसमें तो बिल्कुल ही लोहा होता है, उसके आगे अगर प्लास्टिक लगा पी लेते हैं। तो बहरहाल ये कि हिसाब में रहते हुए करिए जो भी काम करें, ठीक है। फिर अगला बयान है बयानुल खिजाब 173 और 4। खिजाब का बयान, कलर करना बालों को मेहंदी या इससे मिलते जुलते रंग का खिजाब बालों को लगाना मुस्तहब है, यानी पसंदीदा है। हज़रत साबित कहते हैं, हज़रत अनस से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिजाब के बारे में दरियाफ्त किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया, आपके बालों में इतनी सफ़ेदी नहीं थी कि आप खिजाब लगाते, अगर मैं चाहता तो आपके दाढ़ी मुबारक के सफ़ेद बाल शुमार कर लेता, यानी गिन सकता था, बहुत थोड़े थे ये। ये बुखारी की रिवायत है। दूसरी हदीस में आपके दाढ़ी के सफ़ेद बालों की तादाद 15 या 20 दी गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम ने फरमाया, यहूदो नसारा खजाब नहीं लगाते, तुम इनकी मुखालफत करो और खजाब लगाओ। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। अमूमन आप क्रिश्चियन प्रीस्ट को देखेंगे तो उनकी दाढ़ी बिल्कुल वाइट होती है, उसी की तरफ इशारा है। जर्द रंग का खिजाब इस्तेमाल करना भी मुस्तहब है। अब ये जर्द कौन सा है? जिसको हम सुर्ख मेहंदी कहते हैं। अगर आप सुर्ख मेहंदी जो हाथों पे लगाई जाती है बालों में लगा लें तो वो ऑरेंजिश सी हो जाती है। हमें अच्छी लगे कि ना लगे ये एक अलग इशू है, लेकिन गुनाह नहीं है, यहां से ये समझ लें। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दबागत की गई खाल का जूता इस्तेमाल फरमाते, टेन की आवाज लेदर, और अपनी दाढ़ी मुबारक को वर्स और जाफरान से जर्द करते, और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी ऐसा ही करते थे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। मेहंदी और वस्मा मिलाकर खिजाब करना भी मुस्तहब है। हजरत अबू जर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, सफेद बालों को बदलने के लिए बेहतरीन खिजाब मेहंदी और वस्मा है। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। हदीस में अगर लफ्ज देखना तो कतम के लफ्ज हैं। कतम या वस्फा एक बूटी है, बूटी से मुराद हर्ब है, हर्बल है, जो बजाते खुद स्याह रंग देती है लेकिन मेहंदी के साथ मिलकर भूरा रंग देती है, जिसे आपने पसंद फरमाया। खिजाब लगाना मुस्तहब है, वाजिब नहीं, जो चाहे लगाए जो चाहे ना लगाए। अबू हारून अल अबदी नाम है जो हदीस बयान कर रहे हैं, कहते हैं कि हजरत अबू सईद खुदरी खिजाब नहीं लगाते थे और इनकी दाढ़ी सफेद थी। अबू इसाक कहते हैं, मैंने हजरत अली को मिंबर पर खुतबा देते देखा, इनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद थे और वो ईजार पहने हुए थे और चादर ओढ़े हुए थे। हजरत हसन कहते हैं, मैंने हजरत उबई बिन काब को देखा, इनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद थे। हजरत अदी कहते हैं, मैंने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला को देखा, इनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद थे। जुरैर बिन हाजिम कहते हैं, मैंने अता बिन अबी रबाह, रिजा बिन हयात मखहूल और हकम बिन उतैबा को देखा, इन सब की दाढ़ियां सफेद थी। इसे अब्दुल रजाक ने मुसन्नफ में रिवायत किया, किताब का नाम है। आप एक बात याद रखें, किसी भी इशू में एक्सट्रीम पे ना जाए। अब देखिए, आपने एक असल हुक्म पढ़ा, लगाना चाहिए। अब यहाँ सहाबा का मतलब वो नहीं लगाते थे, फिर आपने बीच में पढ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाफ़रान से भी लगाए, फिर आपने बीच में पढ़ा कि जर्द रंग भी हो सकता है। तो इन बातों पे कभी बहस ना करें। यानी मैं तो आपको एक ही बात समझा सकती हूँ, बात करें इल्म के लिए, तहकीक करें तो अकीदे के मौजू पे करें। अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफात, उसके नाम, उसमें तो कोई शिरक नहीं। नबी का मुकाम, उनके बारे में, आखरत, दैट्स इट। फिकी इश्यूज पे पूरी कोशिश कीजिए, हुक्म के मुताबिक अमल करें, लेकिन बहसें ना करें। इसमें अल्लाह के दीन में इतनी वुसत है बाज़ जगह कि कोई एक हार्ड लाइन नहीं है। और इसको एक बात से भी समझिए, आपको यहाँ से कहा जाता है कि बाहर जाना है और आपने सीधी लाइन बनानी है, लाइन में जाए। अब आप लाइन बनाएंगे ना तो आपको देखकर फील होगा लाइन बनाई है, लेकिन अगर कोई नीचे आपके कदमों को देखे तो आप में से किसी के पांव थोड़े से इधर होंगे, किसी के इधर, लेकिन देखने में आप एक ही लग रहे हैं। इसकी बरक्स एक सीधी लाइन खींच दीजिए और आपसे कहा जाए कि सिर्फ आपने इसके ऊपर चलना है, मुश्किल हो जाएगा। हमारे दीन का एक बहुत बड़ा हुसन पता क्या, ऐसे हाथ से देखें। और इसकी मिसाल कुरान में किबले की तब्दीली में है। जिधर भी हो क्या करो, मुंह कर लो शत्र हो। और शत्र किसको कहते हैं, अगर कोई गोल चीज हो आपके पास, मसलन ये देखिए कि ये डब्बी है, तो ये जो है ना, तो शत्र इसका ये हाफ रेडियस, एक होता है डायामीटर पूरा, रेडियस ये चीज है, दायरे को जहां से भी काटे। किबले के लिए शत्र, और शत्र कहते हैं सेमी हाफ को। यानी आप और मैं इस वक्त लंदन में, हमें नमाज पढ़नी है, ये पूरी शत्र में सऊदी अरब की तरफ मुंह करें, खाना काबा की तरफ, इस पूरे शत्र में आपने इधर पढ़ ली, इधर पढ़ ली, इधर पढ़ ली, इधर इधर पढ़ ली, इट्स ओके। ये नहीं कहा गया कि आप इधर से बस एक लाइन खींचे और इसके ऊपर पढ़े, मुमकिन ही ना होता। खाना काबा में जाके आप देखते, खाना काबा के चारों तरफ लोग हैं और फिर हरम की तरफ मुकर हैं। बस ये खूबसूरती है दीन की। और जितने लोगों के मैंने सवाल और प्रॉब्लम्स देखे हैं, वो इन्हीं छोटी छोटी बातों पर है। जी वो तो ये कहता है, ये तो ये कहता है, आप क्या कहते हैं, ताकि आपको एक तीसरी राय दे दें और आपको और परेशान करें। सवाल ना करें इन पर। रिसर्च के मुताबिक जिस चीज पर दिल जम जाता है वो कर लें, और 19-20 हो जाए तो अल्लाह माफ करेगा। लेकिन जिस पे फिक्र करनी है और जिस पे बहुत बहुत कम लोग सवाल करते हैं, वो अकीदा, अल्लाह की जात, नबी का मुकाम, आखरत, मरने के बाद क्या होगा, शिफात, सिफारिश, कब्र, हशर, उस पे बहुत कम सवाल होते हैं। तो हमेशा याद रखिए, बेसिक को छोड़कर साइड की चीजों पे जाना ये ना समझी की बात है। फिर इसी तरह काले रंग का खिजाब इस्तेमाल करना मना है। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, आखिर जमाने में कुछ लोग कबूतर के सीने, आपने देखा होगा सफेद कबूतर होता है ना, तो उसका सीना, चेस्ट ब्लैक होती है पूरी, उसकी तरफ इशारा है, कबूतर के सीने जैसे स्याह रंग का खिजाब लगाएंगे, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेंगे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। अब आप देखिए कि क्यों, या फिर वही पीछे, बहुत पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ा था, औरतों के बनने संवरने में जो चीज मना है वो चीज जिसे धोखा हो, ब्लू लेंस लगाए, अब पता चला वो असली नहीं थे, शादी टूट गई, क्योंकि मर्द ने सिर्फ किया ही नीली आंखें देख के थी। इसी तरह बिल्कुल काले बाल हो जाएंगे तो एज छुपती है, उम्र छुपती है, भूरे, ब्राउन, ऑरेंजिश से सबको पता के लगा हुआ है। तो यहाँ सेम वही रूल है कि जिससे धोखे का इस्तेमाल हो। और मैं आपको सच बताऊं, बगैर किसी अपने एक्सप्रेशंस के, उम्र नहीं छुपती। बूढ़ा बंदा है ना तो थोड़े थोड़े बाल मलगजे से सफेद वाइट हो तो सजता है, चेहरे पे झुरियां और ऊपर बाल बिल्कुल काला, जेट ब्लैक, और भी बुरा लगता है। बस अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान करे। नेक्स्ट टॉपिक है बयानुल हिना, हिना का बयान। हिना किसको कहते हैं? अच्छा, मैंने कहा आप में से कोई हिना हो गिर कहेगी मुझे कहते हैं है? पेज 176 और 7226 मसला है। अहले जन्नत की खुशबुओं में सबसे अच्छी खुशबू मेहंदी की होगी। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अहले जन्नत की खुशबुओं की सरदार मेहंदी होगी। इसे तबरानी ने रिवायत किया। तो मेहंदी को फिर बुरा नहीं कहना चाहिए। कतम के साथ मेहंदी मिलाकर बालों को खिजाब लगाना मुस्तहब है। 223। अब देखिए, कतम स्या वो एक पाउडर टाइप होता था, जड़ी बूटी है ना, पीछे पड़ के है, तो मेहंदी में मिला लें तो मेहंदी की सुर्खी भी खत्म हो जाएगी और बिल्कुल जेट ब्लैक भी नहीं होगा। बेस्ट कॉम्बिनेशन है, खास तौर पे मर्दों को दाढ़ी पे लगाना है, कि आप ऐसा कोई पाउडर जिसमें ऐसी कोई भी नेचुरल चीज है मेहंदी में मिला के लगाएं, ना तो बिल्कुल ऑरेंज होगी और ना काली, उसमें आपको दोनों अक्स मिलता है, वो कर सकते हैं। औरतों के लिए हाथों या पाँव के नाखनों पर मेहंदी लगाना मुस्तहब है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, किसी औरत ने जिसके हाथ में किताब थी पर्दे के पीछे से रसूलुल्लाह की तरफ इशारा किया, तो रसूलुल्लाह ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और फरमाया, मुझे मालूम नहीं कि हाथ मर्द का है या औरत का। ये भी नोट कीजिए। औरत ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, औरत का है। आपने इरशाद फरमाया, अगर औरत होती तो अपने नाखूनों का रंग मेहंदी से बदल लेती। इससे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। लेकिन वही बात है कि फिर हाथों पे मेहंदी है कोई एक्स्ट्रा खूबसूरती के लिए या नाखूनों पे, तो फिर सरेआम बार हाथों को खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हाथ खोलते हैं हम पर्दे में नहीं आते तो फिर उस पर कुछ होना नहीं चाहिए। तो अगर आपने हाथों में कुछ पहना हुआ है, अंगूठियां पहनी है, मेहंदी लगाई, तो फिर जब बाहर जाएं तो आपकी ऊपर की ओढ़नी ऐसी जरूर होनी चाहिए कि जब भी एक है, आप गाड़ी में बैठ गए, आपके साथ भी औरत है, आप इधर से उठे खुद चले गए, एक है, लेकिन आप ड्राइव कर रही हैं और माशाल्लाह खूबसूरत हाथ हैं आपके जिस पे मेहंदी रची हुई है, फिर ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। बाजार गई, शॉपिंग कर रही, ले रही हैं, दे रही हैं, आपके हाथों पर कुछ नहीं होना चाहिए। और सबसे आसान तरीका, जहां पहनने पहने जाने से पहले सब कुछ उतार के बैग में रख के बिल्कुल सीधे हालत में बाहर जाए, एयरपोर्ट्स हैं, जिधर भी हैं बाहर, यानी जहां मर्दों से इंटरेक्शन हो वहां अपने हाथों की एक्स्ट्रा खूबसूरती को छुपा लें। और आसानी भी लगती है। आप देखिए, बार दफा सफर में आपने ऊपर कपड़े पहने, अबाए पहने, ज्वेलरी भी पहनी है, चुभ भी रही है, आप जाने से पहले एग्जॉस्ट होंगे। खास तौर पे जब बाहर जाएं, सफर करें, अपने आप को इतना ईजी रखें, 10 घंटे की भी आप फ्लाइट से उतरें तो फ्रेश होंगे। और अगर कोई ऐसा कपड़ा, जेवर, ऐसा कोई आराइश की होगी जिसमें आपको थोड़े कॉन्शियसली होना पड़ता है, तो फिर उसमें आप थकते बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेहंदी से जख्मों का इलाज करना भी मुस्तहब है, शर्त यह है कि उसमें कोई केमिकल ना हो। पहले दौर में लोग करते थे। हज़रत अली बिन उबैदुल्ला अपनी दादी से रिवायत करते हैं जो रसूलुल्लाह की खिदमत पर मामूर थी, वो कहती हैं, रसूलुल्लाह को जब भी जख्म आता या कांटा चुभता तो आप मुझे वहाँ मेहंदी लगाने का हुक्म देते। इसे तिरमिजी ने रिवायत किया है। क्योंकि आपको पता है कि आज भी माशाल्लाह लोग दोबारा हर्बल चीज़ों पे इलाज पे आ गए हैं, तो अगर इनमें कोई केमिकल ना हो तो बाद दफा जले हुए जख्म पे या बाकी चीज़ों पे इसका हो सकता है। कोई सवाल है आपके जहन में मेहंदी से मुतल्लिक, या जो कुछ अभी पढ़ा रिसेंटली? अच्छा, इससे वो मेहंदी तो नहीं जायज़ हो गई जो शादी से पहले मेहंदी का फंक्शन? ये मैं आपको इसलिए जुमले कड़वे बोलती हूँ कि बाद लोगों ने ये तावीलात की हैं। मेहंदी जायज़ है जी। कौन सी मेहंदी जायज़ है? वो जो लड़के लड़कियों को बुलाकर नाचते टापते हैं, जायजे कहाँ? ये देखें, क्लास में पढ़ा था तो कान खोल के पढ़ने की जरूरत है।